प्रहर रात्रि बीत जाने पर वसुमित्रा के चतुष साल में समाज का अंत हुआ। अभ्यागत अपने रथों, अश्वों और सेवकाओं पर आरूढ़ होकर अपने अपने स्थानों की ओर चले गए। धर्मत्स की पौत्री दिव्या की सेविका के वाहक भी दूसरे अभ्यागतों को विदा होते देखकर आलस्य छोड़ कुमारी के प्रसाद से लौटने की प्रतीक्षा में उठ खड़े हुए। दिव्या और उसकी दासी धाता न लौटी। वसुमित्रा के प्रतिहारियों ने सिंह द्वार के तोरण का प्रकाश बुझाकर द्वार मूदने का आयोजन किया। दिव्या की सेविका के वाहकों ने प्रतिहारियों से धर्मत्स की पौत्री के न लौटने के विषय में जिज्ञासा की। कुमारी के चतुस्साल अथवा उद्यान में कहीं भी न पाए जाने के समाचार से विक्षिप्त और अत्यंत आशंकित होकर भय से कांपते हुए वाहक धर्मत्स के प्रसाद में लौटे। कुमारी के विलंब तक न लौटने से अंतःपुर में चिंतित प्रतव्यों और देवियों को वृद्ध दास तारुक द्वारा रिक्त सेविका आने का समाचार मिला। आर्य प्रबुद्ध शर्मा, विनय शर्मा, धृत शर्मा और अंत में पंडित विष्णु शर्मा स्थानागार के में पहुँचे। अनेक देवियाँ भी चिंता से आशंकित मुद्रा में साथ थीं। कुछ ही समय में तात धर्मत्स, महादेवी और शिशुओं के अतिरिक्त संपूर्ण परिवार अस्थानागार में एकत्र हो गया। अस्थानागार चतुष्साल उद्यान और सिंहद्वार के भित्तों, दासों और प्रतिहारियों से पंडित विष्णु शर्मा ने जाना कि सूर्यास्त से कुछ पल पूर्व ही कुमारी दिव्या, दासी धाता सहित देवी मल्लिका अथवा वासुमित्रा के संगीत समाज में सम्मिलित होने के लिए प्रसाद से स्वीकार पर गई थी। महादेवी के विक्षिप्त अथवा अस्वस्थ होने और शेष परिवार के नवजात संतान के उत्सव में व्यस्त होने के कारण कुमारी के लौटने में विलंब की सूचना नियोजित न की जा सकी। पंडित विष्णु शर्मा ने तत्काल द्रुतगामी अश्वों के लिए आज्ञा दी। कुमारी की खोज में अश्वरोही नर्तकी वसुमित्रा, देवी मल्लिका, प्रेस्त प्रसाद, सामंत सावार्थ के प्रसाद आदि अनेक स्थानों की ओर सरपट दौड़े। सेविकावाहक और दासी धाता की पुत्री युवती दासी छाया विष्णु शर्मा की आज्ञा से तत्काल बंधन में ले ली गई। चारों सेविकावाहकों को पृथक पृथक ले जाकर उन्हें पीड़ित कर रहस्य जानने का आदेश उन्होंने प्रतिहारियों को दिया। वृत्त दास दासियां कंचुकी पृथक पृथक पंक्तियों में अपने दोनों हाथ घुटनों के सम्मुख फैलाए बैठे भय से कांप रहे थे। सशस्त्र प्रहरी हाथ में कोड़े लिए उपस्थित थे। अनेक प्रसादों और भवनों में दासों के अनेक प्रकार के कठोर दंड और पीड़ितों से परिचित होते हुए भी धर्मत्स के प्रसाद में इस प्रकार के कांड की स्मृति किसी को न थी। एक घड़ी के व्यतीत होने के पूर्व ही सभी स्थानों से अश्वारोही असफल लौटे। क्षोभ और अवसाद की घटा गहरी हो गई। सेविकावाहकों से कुछ भी रहस्य न पाकर विष्णु शर्मा ने प्रत्येक को काष्ठबद्ध करने की आज्ञा दी। दिव्या के साथ धाता की अनुपस्थिति के कारण पंडित विष्णु शर्मा ने धाता की पुत्री छाया के अभिसंधि में सम्मिलित होने की शंका की। उन्होंने कुलवधुओं को अपने कक्ष में लौट जाने का आदेश दिया। स्त्रियों के चले जाने पर उन्होंने दो प्रतिहारियों वंकट और ध्वज को आज्ञा दी, दासी धाता की पुत्री छाया को विशेष पीड़ित कर रहस्य जाना जाए। छाया ने आंसुओं से भीगा मुख पृथ्वी पर रखकर त्रस्त कंपित स्वर में गिड़गिड़ाते हुए अज्ञान प्रकट कर करुणा की भिक्षा मांगी। विष्णु शर्मा के संकेत से दोनों प्रहरी छाया को दोनों बाहुओं से उठाकर ले गए। जाते हुए प्रतिहारियों को विष्णु शर्मा ने पुनः आदेश दिया, रहस्य प्रकट करने पर दासी को उपस्थित किया जाए। अंतःपुर की दासियों से उन्होंने जाना, दासी आशा भी मध्यान्ह में कुमारी का पथ्य लेकर उनके कक्ष में गई थी। दो प्रतिहारियों को उन्होंने आशा को ले आकर उससे भी रहस्य जानने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात प्रबुद्ध शर्मा और धृत शर्मा अपने कक्षों की ओर चले गए। विष्णु शर्मा जानू पर कोहनी और हथेली पर डोढ़ी टिकाए पीठिका पर चिंतामग्र बैठे थे और समीप आर्य विनय शर्मा खड़े थे। पीठिका के दोनों ओर दो दो प्रतिहारी आदेश की प्रतीक्षा में उपस्थित थे। शेष भृत्यों, कंचुकियों और दास दासियों को निर्दिष्ट सेवाकार में जाने की आज्ञा हुई। दो घड़ी समय बीत जाने की सूचना आलिंद के सम्मुख लटके घड़ियाल पर पड़े प्रहार द्वारा प्रतिहारी दो बार दे चुका था। दो बार वे प्रतिहारी को भेजकर छाया से जाने गए रहस्य के विषय में जिज्ञासा कर चुके थे। उन्होंने प्रतिहारी को पुनः एक बार और समाचार के लिए भेजा। उत्तर प्रत्येक बार नकार में आने से वे खिन्न हो मौन बैठे थे। सहसा अंतःपुर की यवनी प्रहरी की पुकार सुनाई दी, परिजन सादर सावधान, तात धर्मत्स प्रधार रहे हैं। चिंता से झुका मस्तक उठाकर विष्णु शर्मा ने देखा, दो कंचुकियों के कंधे का आश्रय लिए तात सैन्य अत्यंत कष्ट से पग धरते चले जा रहे हैं। विष्णु शर्मा ने आसन छोड़ नतमस्तक हो प्रणाम करतात से आसन ग्रहण करने की प्रार्थना की। कंचुकियों के कंधे के आश्रय ही खड़े रहकर तात ने प्रश्न किया, मैंने कच्छ में आर्त क्रंदन का चित्कार सुना है, दासी छाया कहाँ है, उपस्थित की जाए। आज्ञा पाकर एक प्रतिहारी तुरंत अस्थानागार में से चला गया। तात के चरण और गिरवा निर्बलता से कांप रहे थे, परंतु वे उसी प्रकार कंचुकियों के कंधे के आश्रय ही खड़े रहे। कुछ क्षण पश्चात प्रतिहारी ने लौटकर धर्मत्स के सम्मुख जानु पृथ्वी पर टिका सिर झुकाए प्रार्थना की, आर्य भट्टारक अभय दान दे, दासी छाया नहीं रही। कंपित स्वर में तात ने प्रश्न किया, दासी छाया नहीं है? आर्य भट्टारक अभय दान दे, दासी छाया जीवित नहीं है। गिरवा झुकाए प्रतिहारी ने समाधान किया। तात का श्वास तीव्र हो गया, उनके जानु हिल गए। दोनों कंचुकियों ने उन्हें बाहों में लेकर पीठिका पर टिका दिया। श्वास की गति में अति तीव्रता और अवरोध के कारण वे कुछ बोल न सके। विष्णु शर्मा, विनय शर्मा और कंचुकी सिर झुकाए पीठिका पर घिराए। वृद्ध कंचुकी बिल्हड़ तात का सिर अपने जानु पर लिए था। कंचुकी बिल्हड़ के संकेत से दूसरा कंचुकी तुरंत दौड़कर आशव और जल ले आया। कुछ बिंदु आशव मिश्रित जल धर्मत्स के ओष्ठों पर डालने से उनके कंठ की घरघराहट दूर हुई। विष्णु शर्मा को समीप आने का संकेत कर वे क्षीण और कंपित स्वर से बोले, पुत्र, अन्याय का प्रतिकार करने के आवेश में तुमने यह अन्याय किया है। इस अन्याय के प्रतिकार का प्रत्न एक दूसरे अन्याय का आरंभ होगा। पुत्र, प्रतिकार और प्रतिहिंसा न्याय नहीं है। तुम्हें बेटी के चले जाने पर आक्रोश है, वह किसके अपराध से गई? मेरे, तुम्हारे समाज के अनु शासन से। पुनः उनका कंठ घरघरा कर हिचकी आने लगी। बिल्हड़ ने पुनः कुछ आंसू मिला जल उनके मुख में दिया। तात अत्यंत कठिनाई से फिर और भी छीड़ स्वर में बोले, छाया को उसकी माता के स्वामी स्नेह का परिणाम, पुत्र, मुझे खोकर तुम्हारे इस अन्याय का प्रायश्चित हो। बिल्हड़ ने पुनः कुछ बूद आंसू धर्मत्स के मुख में दिया। हिचकियों के बीच अवसर में तात ने अस्पष्ट शब्दों में कहा, पुत्री, बेटी पर आक्रोशन करना। बिल्हड़ के ओर चले जल देने पर वे निगल न सके। सांस की गति सरल करने के लिए बिल्हड़ ने उनकी गिरवा सीधी कर दी। वह स्वयं सांस रोके अपलक धर्मत्स के नेत्रों की ओर दृष्टि लगाए थे। तात का माथा विस्तर पर रखकर बिल्हड़ दोनों हाथों से सिर पीट कर चित्कार उठा। अस्थानागार पुनः परिवार के स्त्री पुरुषों से भर गया। प्रसाद में क्रंदन का चित्कार उठ खड़ा हुआ। तात के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, कुलवधुएं, वृत्त, कंचुकी, दास, दासियां और प्रतिहारी सब रो रहे थे। हेमंत के पाले से निबिड आकाश में नक्षत्र भी अस्थिर और द्रवित जान पड़ते थे। इस प्रकार तात धर्मत्स का अंत हुआ।